हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह अंशी की आंख खुली तो वो अकेले सोई हुई थी। रात को विधिक उसके साथ था। अंशी को लगा कि विधिक ने ऐसे ही उसे इमोशंस में आकर अमन के पास भेजने का कह दिया होगा। उसने खुद को संभाला और दरवाजे के पास गई तो दरवाजा खुला था। कल गुस्से में विधिक ने अंशी को बंद कर दिया था। अंशी फ्रेश होकर नीचे पहुंची तो विधिक उसके लिए कुकिंग कर रहा था। उसके पास में हरलीन भी थी। विधिक के फैसले से हरलीन बहुत खुश थी। अंशी को देखकर हरलीन ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आज तो तुम जल्दी उठकर आ गई, तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं हो रही ना? नहीं बुआ, मैं ठीक हूँ, अंशी ने जवाब दिया। और फिर अंदर जाकर उसने देखा विधिक के फेस पर भी स्माइल थी। अंशी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अंशी के एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए विधिक ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे मत देखो बटरफ्लाई, तुम्हारे लिए ही कुकिंग कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद है ना? तुम परसों तक यहाँ से चली जाओगी तो सोच रहा था कि तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाकर तुम्हें खिलाने का। वैसे भी प्रेगनेंसी में क्रेविंग ज़्यादा होती है। विधिक का बर्ताव देखकर अंशी की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। वो बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे शुरुआत में उसके साथ किया करता था, जब अंशी को उसकी सच्चाई पता नहीं थी। विधिक अंशी की इस तरह केयर कर रहा था जैसे वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अंशी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो अपने मन में बोली, कहीं विधिक ने मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया जिससे मेरे बच्चे की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बुआ पर भी यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस दी थी कि मैं अबॉर्शन पिल्स ले लूँ। अंशी विधिक और हरलीन दोनों को ही शक भरी निगाहों से देख रही थी। विधिक अंशी वो उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता था। वो सिर हिलाकर बोला, घबराओ मत बटरफ्लाई, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो पूरा खाना डस्टबिन में फेंक कर तुम्हारे लिए वापस बना सकता हूँ। देखा बुआ आपने, अब जो मैं अच्छे से सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैडम को यकीन नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं है विधिक, मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। अच्छा बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है, अंशी ने बात को टालते हुए कहा और फिर विधिक के पास आ गई। जो भी तुम्हें पसंद है वो सब बनाया है, विधिक मुस्कुराकर बोला। अंशी को उसके साथ अब कंफर्टेबल फील हो रहा था जैसे पहले हुआ करता था। विधिक अंशी को पकड़कर बाहर लेकर आया और फिर उसे खाना सर्व करने लगा। अंशी को यकीन हो जाए इसलिए विधिक ने वो खाना पहले खुद खाया और फिर अंशी को खिलाते हुए कहा, अब यकीन हो गया होगा मैंने कुछ नहीं मिलाया है इसमें। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो विधिक, अंशी मुंह बुलाकर बोली और फिर खाना खाने लगी। इस तरह से वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। विधिक उसके चेहरे को काफ़ी गौर से देख रहा था। अंशी को देखते हुए उसकी आंखें नम होने लगी तो उसने तुरंत दूसरी तरफ नजरें घुमाकर अपने आंसू साफ कर लिए। तुम मेरे सामने रो सकते हो, अंशी ने जवाब दिया और फिर खड़े होकर विधिक को हल्के से हक किया। विधिक बैठा हुआ था जबकि अंशी खड़ी थी। अंशी ने उसकी बालों को सहलाकर कहा, क्या इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? अगर तुम नापने बैठोगी तो इस दुनिया की हद खत्म हो जाएगी बटरफ्लाई। अब ऐसी बातें करके मुझे कमज़ोर मत करो। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लिया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारे उस एजेंट ने अगर तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो मुझे बताना, आई स्वेयर मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, विधिक ने जवाब दिया और फिर अंशी से अलग हो गया। अंशी विधिक के चेहरे की तरफ देख रही थी जो ज़बरदस्ती खुश रहने का दिखावा कर रहा था। उसे देखकर अंशी ने अपने मन में कहा, काश यही डेडिकेशन तुमने उस वक्त दिखाया होता जब हम पहली बार मिले थे। क्यों तुम हर बार मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो विधिक राणा कि तुम एक अच्छे इंसान होते और मैं कभी अमन से मिला ही ना होती। पहला प्यार हमेशा तकलीफ ही क्यों देता है? अंशी अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी विधिक की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। विधिक ने कहा, मैंने कल रात मिस्टर कपूर से कॉन्टैक्ट किया था और उसे बता दिया है कि मैं तुम्हें लेकर मुंबई आ रहा हूँ। मैंने पुलिस को लाने से मना किया है, आई होप कि वो कोई स्मार्टनेस ना दिखाएं। बाकी मैंने अभी तक तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात उसे बताई नहीं है, तुम बताओगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कपल के बीच का एक इमोशनल मोमेंट होता है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो तुम्हारा बताना ज़्यादा सही रहेगा। अंशी ने विधिक की बात पर हामी भरी। देखते ही देखते दो दिन बीत चुके थे और इन दो दिनों में अंशी और विधिक ऐसे रह रहे थे जैसे कि वो बेस्ट फ्रेंड हो। विधिक ने अंशी का हर तरीके से ध्यान रखा तो वहीं अंशी भी उसके साथ में पहले की तरह कम्फर्टेबल हो चुकी थी। आखिर वो पल आ ही गया था जब विधिक अंशी को लेकर मुंबई जा रहा था। जाने से पहले वो हरलीन से मिली। हरलीन और अंशी एक दूसरे से गले लगी हुई थी। अंशी ने नम आंखों से कहा, मैंने पहले भी आपको बहुत मिस किया था और अब भी करने वाली हूँ, प्लीज़ विधिक का ख्याल रखिएगा बुआ। अंशी की बात सुनकर विधिक के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने अपने मन में कहा, तुम बिल्कुल पागल हो बटरफ्लाई, जो नहीं हो सकता उसकी दुआ मांगती रहती हो। अभी भी तुम्हें यही लगता है कि काश मैं अच्छा इंसान होता और सही टाइम पर सुधर जाता तो तुम और मैं साथ होते। इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है। अब मैं वापस उन रास्तों में नहीं जाना चाहता जो मैंने तुम्हारे चलते छोड़े थे। शायद मैं तुम्हें कभी डिजर्व ही नहीं करता था बटरफ्लाई। तुम मेरी जिंदगी में एक बटरफ्लाई बनकर ही आई थी, काफी सारे रंग भरने, और जब सारे रंग भर गए थे तब तुम जा रही हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता जो मुझे जीना सिखा सके। तुम्हारी यादें मेरे लिए जीने के लिए काफी होगी। तुम हमेशा मेरी बटरफ्लाई रहोगी, मेरी इनोसेंसी बटरफ्लाई। सोचते हुए विधिक की आंखें नम होने लगी थीं। पिछले 2-3 दिनों से वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था आंशी को लेकर, लेकिन फिर भी उसने अपना फैसला नहीं बदला था। हरलीन आंशी से अलग हुई। उसने आंशी के गाल पर हाथ रखकर कहा, हमेशा अपना ख्याल रखना, जैसी हो वैसी ही रहना, कभी खुद को मत बदलना। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। कम नहीं बुआ, बिल्कुल भी नहीं होते। मेरी बटरफ्लाई यूनिक है, विधिक उसकी बात के जवाब में बोला। चलो अब चलते हैं, वी आर गेटिंग लेट। आंशी ने विधिक की बात पर हामी भरी और उसके साथ प्राइवेट जेट में जाकर बैठ गई थी। उन्होंने वहां से इंडिया के लिए उड़ान भरी। वहीं दूसरी तरफ विधिक ने पहले ही अमन को कॉल कर दिया था। अमन पूरी तरह तैयार था, उसकी पूरी टीम उसके साथ मुंबई जा रही थी। हालांकि अमन इसके खिलाफ था और उसने अपने आसपास किसी को ना रहने के लिए कहा था। विधिक के फ्लाइट लैंड करने के कुछ देर पहले अमन मुंबई के बीच पर पहुंच चुका था। वो अकेले ही गया था। उसने देखा बीच एरिया को पूरा खाली करवा दिया गया था, और ये किसने करवाया था ये उसे छुपा नहीं था। कुछ ही देर में वहां विधिक और आंशी का चोपर लैंड हुआ। विधिक आंशी का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर आ रहा था। अमन हैरानी से आंशी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख के बजे खुशी के भाव थे, तो वहीं विधिक का चेहरा भी हमेशा से अलग काफी सॉफ्ट लग रहा था। विधिक आंशी का हाथ पकड़कर उसे अमन के पास लेकर आ रहा था। विधिक आंशी को अमन के पास लेकर आया और उससे कहा, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि अब तक तुम इस सदमे से बाहर नहीं निकले होंगे कि मैं इसे यहाँ छोड़ने क्यों आया हूँ। हाँ, तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ से जाने से पहले भी तुम 2 लोगों को मार कर गए थे, तो अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया मिस्टर राणा, अमन ने हैरानी से पूछा।
बस मेरी बटरफ्लाई है जो मुझे बदल सकती है, चाहे वो गुड वे में हो या बैड वे में, विधिक ने पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। फिर उसने आंशी को साइड से हग किया और अमन से बोला, अपनी सांसें तुम्हें देने जा रहा हूं अमन कपूर, इसके चेहरे पर एक भी दुख की लाइन नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन तुम इसे यहां क्यों छोड़कर जा रहे हो, इसका कारण तुमने अभी भी नहीं बताया, अमन ने पूछा। वो सच जानना चाहता था। इसका कारण तुम्हें बटरफ्लाई बताएगी तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मेरी बटरफ्लाई को मेरे ही खिलाफ यूज करना चाहते थे। मैं कभी अपने खिलाफ सबूत नहीं छोड़ता। फिर अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, तो तुम्हें कुछ मिलना भी नहीं था। खैर छोड़ो, पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मेरे पास यहाँ ज्यादा टाइम नहीं है जो तुम लोगों को बैठकर ज्ञान दे सको। आई होप आगे से केयरफुल रहोगे। और हाँ, मेरी बटरफ्लाई का किसी भी मिशन में यूज मत करना। जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा माफिया किस वक्त क्या करने वाला है। विधिक ने अपनी तरफ से हेल्प ऑफर की थी, जिसकी उम्मीद अमन को बिल्कुल नहीं थी। आंशी उनकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर बोरियत के भाव थे और वो उसी लहजे में बोली, अब तुम दोनों यहाँ कितनी देर खड़े रहकर एक दूसरे से इसी तरह एटीट्यूड में बात करने वाले हो? मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। इतनी देर खड़ी नहीं रह सकती मैं। हाँ तो बता दो ना बटरफ्लाई, इतनी देर खड़ी क्यों नहीं रह सकती तुम? ये कैसे तुम्हें अजीब नज़रों से देख रहा है, वो भी मेरे सामने? मैं ये नहीं टॉलरेट कर सकता कि तुम्हें कोई और देखे। मैं चला जाता हूँ, विधिक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर जवाब दिया। वो वहां से जाने को हुआ, तभी आंशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लिया। अभी रुको, ऐसे ही नहीं जाना है, आंशी ने जवाब दिया और फिर अमन की तरफ देखकर कहा, मेरे पास कोई फिल्मी लाइन नहीं लिखी हुई है और ना ही मैंने कोई तैयारी कर रखी है। एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट, तभी विधिक मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था। तुमने बहुत बोरिंग तरीके से बताया है बटरफ्लाई, विधिक ने आइज रोल करके कहा, जिस पर आंशी ने उसके हाथ पर हल्के से मारा। अमन को समझ नहीं आ रहा था इस हालत में वो कैसे रिएक्ट करे, वो आंशी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर खुश हो या इस बात का दुख मनाए कि विधिक और आंशी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कितने अच्छे दोस्त हों। हालांकि आंशी की प्रेगनेंसी उसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी। उस वक्त अमन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। आंशी के सब बताते ही विधिक वहां से जाने से पहले बोला, अच्छा बटरफ्लाई, अब मैं यहां और नहीं रुक सकता, और हो सके तो मुझसे कॉन्टैक्ट मत करना, वरना मेरे लिए फिर से खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जाने से पहले आंशी ने उसको हग किया और उसे खुद का ध्यान रखने का प्रॉमिस किया। वो तीनों इस वक्त समुद्र के बिल्कुल पास में खड़े थे। विधिक वहां से कुछ कदम चला ही था कि तभी एक गोली तेज गति से चलते हुए आई और विधिक के सीने के पास जाकर लगी। विधिक की बॉडी झटके से समुद्र में गिर गई थी और आंशी गोली की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाई, ये गोली लावण्या ने चलाई थी।